बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिताश्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। कौन सी शिक्षा बच्चे? तुमको फैशन नहीं करना है। आज की दुनिया फैशन की दुनिया है। कितने प्रकार के फैशन करते हैं, कैसे कैसे बाल बनाते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, पर तुमको फैशन नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रहना है। और यहाँ जितना सिंपल रहेंगे उतना ही भविष्य में बहुत सुंदर देवता बनेंगे। देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ कोई लिपस्टिक पाउडर मेकअप ये सब नहीं करते। तो वो ब्यूटी जो उनकी सुंदरता है उसका आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता के कारण उनकी वो ब्यूटी, वो सुंदरता स्पष्ट अनुभव होती है। या तो पवित्रता है नहीं तो झूठी सुंदरता दिखाते हैं मेकअप करके, हाँ फैशन करके। और बाबा ने कहा खास करके बालों का फैशन, उस समय साकार बाबा के समय ये बड़े वंडरफुल फैशन करते थे बालों का। आजकल तो खुला ही छोड़ देती है बहने, बस खुले बाल, छोटी नहीं करती है, खुले, वो फैशन समझते हैं। लेकिन ये फैशन कहाँ से सीखा है? बाबा कहते चित्रों से। कैसे चित्रों से सीखा है? वो शंकर पार्वती को दिखाते हैं ना, पार्वती को बड़ा फैशनेबल दिखाते हैं फोटोज में जो दिखाते हैं, तो उनके बाल कैसे दिखाते हैं, तो वो फैशन कहाँ से सीखा? चित्रों से। तो उस समय ऐसे ऐसे चित्र बनाते थे देवियों के, खास पार्वती के। सीता तो बेचारी बहुत सिंपल दिखाते हैं, लेकिन पार्वती को बहुत फैशनेबल दिखाते हैं, शिव के साथ है। पर बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। दादी जी हमेशा यही कहते थे, कुछ भी नई चीज बनानी होती थी यही कहते थे, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। जितनी सिंपलिसिटी है उसमें ब्यूटी है, उसी में सुंदरता है, सादगी में ही सुंदरता है। सादा जीवन ऊंच विचार, ये कहावत है। तो इसीलिए जीवन सादा हो लेकिन विचार बहुत ऊंचे हो। और दुनिया में क्या देखते हैं? विचार घटिया, परंतु जो जीवन जीते हैं वो जैसे रईसों का जीवन। तो बाबा तो हम बच्चों को कितना सिंपल बनाते हैं। यहाँ तुम वनवा में हो, तुमको कोई भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी सीख है बाबा की आज की मुरली में। और दूसरा बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे पैगंबर। बाबा पैगंबर है और हम उनके बच्चे भी पैगंबर है। वास्तव में बाबा कहते हैं कोई भी धर्म पिता को पैगंबर नहीं कहेंगे, वो तो धर्म अपना स्थापन करते हैं बस, परंतु पैगाम कुछ नहीं देते, दुनिया को थमाते हैं। जो उस समय की आवश्यकता है, शिक्षा है, वो देते हैं, लेकिन सच्चा पैगाम भगवान ही देते हैं। कौन सा है वो सच्चा पैगाम? घर चलने का पैगाम। धर्म पिताएं घर चलने का पैगाम नहीं देती, वो तो और ये आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती है उनके आने के बाद, परंतु शिव बाबा जब आते हैं तो घर का पैगाम देते हैं। और उसके लिए क्या बनाते हैं? हमें सच्चे सच्चे वानप्रस्थी। क्योंकि जब वानप्रस्थी बन जाते हैं तो यही सोचते ना, बस अभी इस दुनिया से जैसे रिटायर्ड हो गए, बच्चों को सब दे दिया और रिटायर्ड हो गए। तो बाबा हमको वानप्रस्थ का भी अर्थ बताते, वाणी से परे जाना, वाणी से प्रस्थान करना, आवाज की दुनिया से दूर जाना, घर जाना, बस यही बाबा ने हमें संदेश दिया। ये संदेश सबको देना है, सबको ये बेहद का वैराग्य दिलाना है, सच्चा पैगाम देना है। तो आज की मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 23/7/2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। ये बहुत बड़ी सेवा करनी है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? चकाचौंध की दुनिया है ना, हाँ, सब आर्टिफिशियल। तो किस तरफ भटकती है आजकल मनुष्यों की बुद्धि? उत्तर है, फैशन के तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन कहाँ से सीखे हैं? चित्रों से सीखे हैं। समझते हैं, पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। एक बार साकार बाबा की मुरली में आया था, एक बार कोई महिला ने ऐसा फैशन किया था, ऐसे बाल बनाए थे जैसे घोंसला, हाँ, बालों में वो घोंसला बनाया, तो वहाँ चिड़िया आकर के बैठ गई। तो चिड़िया वो अंडे भी दे सकती, ऐसा घोंसला बनाया। तो बाबा कहते हैं, समझते पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता है, फैशन की दरकार ही नहीं है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, जब ये महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पति पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगाम कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, कोई छोटा व बड़े होते हैं। हाँ, कई धर्म पिताएं छोटे छोटे मठ पंथ भी स्थापन करते हैं, उनको भी समझते ये मैसेंजर है। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं है। अनेक शाखाएं निकल आती है, हर एक अपने अपने ढंग से जो भी कहते हैं। बाबा कहते हैं, वो कोई मैसेज नहीं देते हैं घर चलने का, वो मैसेज व पैगाम देते नहीं है। ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं, सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी भी महिमा नहीं है। चाहे मठ पंथ भी कितने स्थापन हो रहे हैं, अलग अलग कई प्रकार के आश्रम बन गए, क्या नहीं हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं किसी की भी महिमा नहीं है इस मनुष्य सृष्टि पर। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की ही है। इस दुनिया में सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की ही है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, लक्ष्मी नारायण को भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं, क्या जानते हैं दुनिया वाले भारत के बारे में, कि ये भारत प्राचीन देश है, बस इतना ही जानते हैं, बहुत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं, हाँ कोई लॉर्ड कहते हैं, कोई गॉड भी कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। कहाँ थे ये पता ही नहीं है उनको, लेकिन बाबा कहते हैं इनको ये नहीं मालूम ये सतयुग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए, भगवान के बच्चे मास्टर भगवान भगवती होने चाहिए, सब एक के बच्चे है ना। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि भगवान को तो कोई भगवती है ही नहीं, वो तो निराकार है, कहाँ से उनकी भगवती आएगी। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते हैं तो देवताओं को क्या कहेंगे? देवी देवता। ये शोभता है शब्द, उनको कहेंगे देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं सब? बापूजी भी नई दुनिया नया राम राज्य चाहते थे। भारत स्वतंत्र हुआ तो समझा नया राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो नया राम राज्य चाहते थे। परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। कैसा होता है राम राज्य? बाबा कहते उसका अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है, कलयुग में है पत्थर बुद्धि, पर पत्थर बुद्धि होते हुए अहंकार कितना है मनुष्यों को। सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको भी समझ नहीं है कि हम पत्थर बुद्धि है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी भी है। वो दिखाते हैं ना पुष्पक विमान, ऐसे महल दिखाते। बाबा कहते लोग कहते हैं ये तो अभी भी है, बड़े बड़े महल है, इतने अच्छे अच्छे विमान है, वो तो अभी भी है। तो वो अलग काय का स्वर्ग था, अभी स्वर्ग है। साइंस कितना वृद्धि को पाई हुई है, फिर कह देते ना साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया। अभी साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। तो बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बाल आदि आर्टिफिशियल सुंदरता दिखाने लिए? कितना खर्चा करते हैं ब्यूटी पार्लर में, कितना खर्चा करते हैं महिलाएं? अभी तो पुरुषों की भी ब्यूटी पार्लर है, क्या बनाते होंगे, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। स्त्रियां और पुरुषों को कशिश करने के लिए ये सब करती है। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी, मुंह पर काली जाली पहनती थी पारसियों में पहले होगा, कि कोई देख करके आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। वो अपने आप को ढकती थी, वैसे भी माताएं घूंघट करती थी तो कोई आशिक न हो जाए। गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए? गीत तो था तुम्ही माता पिता हो, तो ये किसके लिए गायन होना चाहिए? मात पिता कौन है ये भी नहीं जानते हैं। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, अगर परमात्मा मात पिता है तो जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था, कहते भी हैं, बच्चे क्या कहते हैं, कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे, आप ही हमें वर्षा देते हो, हम तो आपसे ही सुनेंगे और किससे नहीं सुनेंगे। बच्चे कहते हैं अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है, ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, महिमा सारी शिव बाबा की है और ब्रह्मा की आत्मा क्या कहती है, ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे हम सो पावन थे अब पतित बने हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं, हम ऐसे ही कहेंगे। जो नंबर वन पावन वही नंबर वन पतित, जैसे बाप वैसे बच्चे, ब्रह्मा बाप जैसे वैसे उनके बच्चे भी वैसे। इन नंबर तो बाबा कहते हैं जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, हाँ शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, हाँ पहले नंबर के वही लास्ट नंबर, फिर उनके ही तन में आता हूँ। अब है संगम, तुम कलयुग में थे और अभी हम कलयुग में नहीं है, कहाँ है हम संगम युगी, अभी हम संगम युगी बने हैं, बाप संगम पर ही आते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, ज्ञान तो मिल गया है कि हम सो देवता थे फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, ये ज्ञान है बच्चों को मिल गया है। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, ये तो बहुत सहज है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं, कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है बहुत सहज, बच्चों की बुद्धि में बैठा है लेकिन कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में भी नंबर वार तो होते हैं ना, राइट से लेकर शुरू करते हैं, हाँ राइट से लेकर शुरू करते हैं, पहले जो लिखते थे ना तो उर्दू जो लिखते हैं वो राइट से ऐसे लेफ्ट की तरफ है, हिंदी लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट, तो राइट से लेकर शुरू करते हैं, फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, बच्चियां खुद भी कहती है हमारी तो थर्ड क्लास बुद्धि है, बच्चियां कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता, हम किसको समझा नहीं सकते। अब किसकी थर्ड क्लास बुद्धि होगी जो किसको समझा नहीं सकते, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते हैं, बाबा हम क्या करें, बाबा को कहते बाबा हम क्या करें, दिल तो बहुत होती है हम औरों को ज्ञान दे लेकिन हम बोल नहीं सकते, तो बाबा कहते मुख से मुख तो है ना, और बातें बोलने के लिए तो बहुत होशियार है, इधर की बात उधर की बात पर चिंतन वो तो वह सहज है करना, तो ज्ञान क्यों नहीं सुना सकते, तो ये भी कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं ज्ञान नहीं सुना सकता या सुना सकती, लेकिन बाबा को कहते बाबा बोल नहीं सकते बाबा क्या करे, तो फिर बाबा क्या जवाब देगा, जब बाबा को कहते बाबा हम ज्ञान नहीं सुना सकते हैं तो बाबा क्या उनको कहेंगे, बाबा कहेंगे ये तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है, अगर आप नहीं सुना सकते हो ज्ञान ये भी तो आपका कोई कर्मों का हिसाब किताब है, नहीं तो ज्ञान सुनाना तो कितना सहज है, ये भी अपने कर्मों का हिसाब किताब है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ, कर्म करना है ये तो तुम बच्चे जानते हो, कर्म तो छोड़ नहीं सकते कर्म तो करना है, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके, हाँ ये तो बाबा ही अथॉरिटी बोलेंगे ना, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ नहीं सकेंगे, किसी को समझा नहीं सकेंगे। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाएं, वो है निर्वाण धाम। निर्वाण धाम तो निर्वाण का बाबा अर्थ बताते हैं वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वो भी कहने मात्र कहते हैं। वानप्रस्थी माना बिल्कुल सब कुछ भूल जाना चाहिए, धन दौलत ये सब बच्चों को दे करके वानप्रस्थ बनते हैं। परंतु बाबा कहते हैं भले 60 साल के भी हो गए तो भी फंसे रहते हैं ना गृहस्थी में। अब वो तो कहने मात्र ही कह देते हैं वानप्रस्थी है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सीनियर सिटीजन्स की बहुत संस्थाएं होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, बच्चे इनकी पालना तो करेंगे। अभी ओल्ड एज होम में रखते हैं तो बच्चे खर्चा तो देते होंगे ना, ओल्ड एज होम में रखते हैं तो कई तो नहीं भी देते होंगे। कई तो नहीं भी देते हैं तो फिर कई संस्थाएं उनको मदद करती है। तो खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसकी भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाना माना निर्वाण धाम में जाना। वानप्रस्थ किसको कहेंगे? निर्वाण धाम में जाना, अपने घर में जाना। तो निर्वाण धाम क्या है? अपना घर है, अपने घर में जाना। वो कोई घर नहीं समझते हैं, निर्वाण धाम को अपना घर नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं निर्वाण में जाना माना ज्योति ज्योत में समा जाना। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, वहां कोई समाने का स्थान नहीं है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी रिटायरमेंट तो 60 वर्ष में होती है ना, तो कायदा था कि सब बच्चों को हैंडओवर करें, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। परम धाम के गेट अभी खुले ही नहीं है, तो इस समय वाणी से परे निर्वाण धाम तो कोई जा ही नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पति पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। ये तो बाप का ही काम है सबको निर्वाण धाम ले जाना। इसलिए पति पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, सतयुग में कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है सतयुग के में, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है कैसे वृद्धि होती है। सतयुग में भी तो वृद्धि तो होती है ना, तो कैसे होती है बाबा कहते किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, सतयुग में त्रेता में कितनी होगी आदमशुमारी। बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र तो 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता है? 84 लाख का चक्र हो, कितना टाइम लगेगा 84 लाख का चक्र घूमने में? तो 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही गूंजा हुआ है। ऐसा सूत गूंजा हुआ है जो सुलझता ही नहीं है, और ही थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और ही उलझ जाता है। तो फिर ऐसे सूत को क्या करना होता है, धागा होता है ना एक, बहुत वो मुंझा हुआ है, एक जगह कोशिश की गांठ खोली तो दूसरी जगह वो गांठ आ गई, तो फिर वो सूत को फेंका जाता है। बिल्कुल सूत ही मुंझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप में कर्म अकर्म और विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है, इसलिए वहां कौन से कर्म कहलाते हैं, कर्म अकर्म कहलाते हैं। अकर्म क्यों और विकर्म क्यों नहीं, विकर्म क्यों नहीं, क्योंकि वहां विकार है ही नहीं, वहां पर नेचुरल देही अभिमानी है, और जब विकार है देह अभिमान है तो विकर्म होते हैं, तो इसलिए वहां कर्म अकर्म हो जाते, इस समय के सत्कर्मों का फल पाते हैं। तो हम यही कहते हैं ना, सतयुग में भी कर्म तो करते हैं, लेकिन वो ऐसे कर्म है जो इस संगम युग के जो कर्म किए उसको न्यूट्रलाइज करते जाते हैं, फल खाते जाते खाते जाते। कई पूछते हैं देवताएं गिरे क्यों, तो क्यों गिरे, वास्तव में देवताएं तो सदा देवता रहना चाहिए, गिरे क्यों, लेकिन वो जो संगम पर सुख कर्म किए, इतने श्रेष्ठ कर्म किए, उनका वहां फल खाते हैं। तो कर्म करना भी एक कर्म करना है, लेकिन फल खाना भी तो एक कर्म है ना, एक है कर्म करना, दूसरा है फल खाना, तो फल खाना भी तो एक कर्म है, और उस कर्म वो अकर्म हो जाते हैं तो फल खाते जाते हैं, परंतु खाते जाते हैं तो एक दिन तो खत्म होंगे ना, अब कमाई बहुत की, फिर कमाई खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, निकालते जाओ निकालते जाओ, बैंक से एक दिन तो खाता खाली हो जाएगा ना, तो इसीलिए बाबा कहते उसको कहते कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानपरस्त अवस्था है, ऐसे नहीं छोटे बच्चों की नहीं है, छोटे बच्चों की भी वानपरस्त अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, परंतु जब तक पावन दुनिया नहीं है, आकर पावन बनाओ कहते हैं, लेकिन जब तक पावन दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया है, तो पावन तो कोई रह न सके, पावन तो इस कलयुगी इस पतित दुनिया में रह ही नहीं सकते। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे कैसे जाएंगे नई दुनिया में, कैसे जाएंगे, बाबा कहते हाँ उसकी सारी नॉलेज है, पावन बन करके घर जाना है, बाबा आया ले जाने, सारी नॉलेज है। ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए नई नॉलेज। तुम अभी संगम पर बैठे हो, जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है, तुम संगम पर बैठे हो तो संगम पर कौन होते हैं, ब्राह्मण, और बाकी दुनिया कलयुग में है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो तुम तो संगम युग पर बैठे हो, दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वो तो कलयुग में है, वो थोड़ी संगम पर है, इसलिए वो अपने को ब्राह्मण तो कहलाते नहीं है, पर हम संगम युग पर बैठे हैं तो हम अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, तो वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो कलयुग में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो कलयुग में है, हम सब संगम पर हैं, तो ब्राह्मण माना संगम युग पर होना, जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर ये संगम युग है, वो तो है ही स्वर्ग, स्वर्ग में जा रहे हैं इस संगम युग से, उनको संगम में कहा जाता है, अब स्वर्ग को संगम नहीं कहा जाता है, स्वर्ग संगम अभी है, हम जा रहे हैं स्वर्ग में, संगम तो अभी है। ये संगम युग सबसे छोटा युग है, इसको लीप युग भी कहते हैं। लीप युग, लीप मन एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा है, उन्हीं युगों में ही ये संगम युग है ना, जो कलयुग और सतयुग का संधि काल। बाबा कहते इसी को लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। धर्माओ महीना भी होता है ना, तो बहुत दान पुण्य करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा महीना होता है, तो नहीं तो 12 महीना होता है, तो वो एक्स्ट्रा महीना उसके अंदर ही होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संगम, तो बाबा कहते हैं जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माओ युग भी कहा जाता है। अधिक मास कहो या धर्माओ मास कहो, जिसमें बहुत दान पुण्य करते हैं, बाबा कहते हैं इसलिए इसको धर्माओ युग भी कहा जाता है। संगम को कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं, सतयुग में सब धर्मात्माएं हैं, तो और इस समय सभी मनुष्य अधर्मी हैं। भक्ति मार्ग का कितना प्रभाव है, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। मार्बल की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की बिरला मंदिर में आप जाएंगे, क्या सुंदर मूर्ति है, देखते ही दिल खुश हो जाए, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, अब वो तो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में भी कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए, शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है, अब तुम्हारी आंखें खुली है, आंख खुल गई ना हमारी, देखो क्या करते थे और बाबा ने कैसे ये ज्ञान दिया है, अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। एक है आंख खुलना, दूसरा है बुद्धि के कपाट खुलना, कपाट हाँ दरवाजे, बुद्धि के कपाट खुलना। बाप ने नॉलेज दी है, परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है ना, जो भी पद किसी को मिलता आत्मा ही बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते हैं, अभी तू समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए क्या बन गई हो, बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। भगवान के माँ बाप के दुर्गति को पाए हुए हैं सब 84 का चक्र लगाकर। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े, इस सृष्टि मंच पर आती है आत्मा तो शरीर जरूर धारण करना पड़े, शरीर बिगड़ आत्माएं बोले कैसे, बोलने के लिए तो वाच करने लिए तो मुख चाहिए, शरीर बिगड़ आत्माएं कैसे बोले, फिर सुने कैसे, कैसे सुने, कान तो शरीर में ही है तो कैसे सुने। तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ, तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं, ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हो, फिर समझाते भी हो, समझते भी हैं फिर समझाते भी हैं। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम देवता बन रहे हो, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। पहले शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला तो शिव बाबा ही है। जब हम किसको सुनाते हैं तो क्या कहते हैं हमको, ये किसने बताया? लोग पूछते हैं ना, किस शास्त्र से आप सुना रहे हो, आपने कहाँ से सुना? तो हमको तो शिव बाबा ने सुनाया। तो हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना, रावण क्या बनाता है? पाप आत्मा। रावण पाप आत्मा बनाता है और राम पुण्यात्मा बनाता है। अब ये और कोई नहीं जानते, भल रावण की एफिजी जलाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है कि रावण ने हमको पाप आत्मा बनाया है, ये भी नहीं समझते हम। सीता को रावण ले गया, ये किया वो किया, सुनाते ना, तो रामायण सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं, ऐसे सुनाते, इतना डिटेल में विस्तार करके सुनाते हैं, जो माताएं माँ बैठी होती ना सभा में, वो तो रोने लगती है, हाय सीता चुराई गई, हाय 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 करती, जैसे कि वो ही चोरी हो गई है, ऐसे रोती भी है। तो बाबा कहते हैं सीता को भल रावण की एफिजी जलाते परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, ये किया वो किया, बड़ा चढ़ा करके वो सुनाते हैं शास्त्री। कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठकर सुनते हैं तो रो भी लेते हैं, खास करके माताएं तो रोने लगती है, रो लेते हैं। अब वो है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्मा जीत बनाने के लिए समझाते हैं, वो तो खाली कथाएं सुनाते हैं, और बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं वो किस लिए सुनाते हैं? विकर्मा जीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, कहां भी बुद्धि नहीं लगाओ। बहुत बड़ी शिक्षा ये, माम एकम याद करो, कहां भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना परिचय दिया, तो पतित पावन बाप वही खुद आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। सब समझते ना हम सब कि कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हाँ क्या सार निकला? पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। क्या करना चाहिए? जब हम गति को जान गए हैं कर्म अकर्म विकर्म की, तो इसको जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है, तो सतयुग में देवताओं को धर्मात्मा भी कहेंगे, पुण्यात्माएं भी कहेंगे, महात्माएं भी कहेंगे, देवात्माएं भी कहेंगे ना, ये सब उनके टाइटल है। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा, ये वान परस्त अवस्था है। हाँ ये कॉन्सेप्ट की अभी वान परस्त अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में, वान परस्त अवस्था में इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, पावन बनने का मैसेज सबको देना है कि हम सबको पावन बन घर जाना है, ये मैसेज सबको देना है। वरदान पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना होगा? पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। कैसे बनेंगे संतुष्ट मणि? आज बाबा ने बताया, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से, किस किस से? अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। किससे संतुष्ट रहना है? अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट, सर्विस से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं, खुद भी संतुष्ट रखते अपने आप को और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। विजय माला में आने के लिए क्या करना होगा? खुद भी संतुष्ट और सबको संतुष्ट करना। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। ये पासपोर्ट लेने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो तो ये पासपोर्ट मिल जाएगा संतुष्ट मणि का। स्लोगन का, निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो, सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। यह व्यक्ति इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसका विस्तार क्या है? पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। बाबा से सच्चे दिल का प्यार चाहिए अगर पावरफुल याद में रहना है तो। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप को याद कर सकते हैं। तो बिंदु बन बिंदु स्वरूप शिव बाबा को याद करना, उसके लिए सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। किस आधार पर? सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति। आज सतगुरुवार है और हम सबके प्यारे प्यारे बाबा के साथ रूहान का अमृत वेले से ही सिलसिला आरंभ हो जाता है और प्यारे बाबा भी बच्चों के मीठी मीठी रूहान सुन करके कितना ना खुश होते हैं और बच्चों के रूह रूहान का बाबा रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो आज हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भाई बहने आज वतन में बाबा के पास जाएंगे वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि आज के दिन बाबा सबको वतन में बुलाते हैं। कोई नहीं बुलाता है तो बाबा कहते क्यों नहीं आया है। बाबा को हमेशा रहता है कि जब बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो बाबा भी बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सब बच्चों को वतन में आना है और सूक्ष्म अव्यक्त मिलन का अनुभव बाबा के साथ मिलने का और बाबा से रूहान करने का एक सुंदर मौका मिलता है। और आज के दिन तो हमारे पास भट्टी के भी भाई बहने आए हुए हैं। भट्टी के भाई बहने हाथ खड़ा करें, बहुत अच्छा है, स्वागत है। और भट्टी के भाई बहनों को देख करके ब्राह्मण परिवार तो खुश होता है, बाबा भी खुश होते हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि अपने ही घर में आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं और बाबा से मिले मनाते हुए तपस्या कर रहे हैं, तो ये भी बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए भट्टी के सभी भाई बहनों का बाबा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जोर से ताली बजाओ, खुशी की ताली बजाओ, ताकि आपकी खुशी की आवाज सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंचे। है ना सब खुश? बाबा को बता दें खुश है कि नहीं। यह संकल्प है बाबा, ये समस्या है बाबा, ये है मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरा ये नहीं मानता है। आज सब संकल्प बाबा को अर्पण कर दो, ठीक है, और निश्चिंत होकर के भोग में बैठना है। तो हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा। एक लाइन होगी भाइयों के उस स्टैंड के पास, आप देख रहे ना, और दूसरी लाइन होगी भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें, भट्टी के भाइयों की लाइन यहाँ बीच में होगी और भट्टी की टीचर्स हाथ खड़ा करें, भट्टी की टीचर्स पहले यहाँ आएंगे इस दूसरा कैमरा स्टैंड के पास, फिर भट्टी की माताओं की लाइन होगी और दो लाइनें होंगी अन्य बहनों के। और अमृत पिलाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे किरण बहन को, प्रभा बहन है, प्रभा बहन हाथ खड़ा करें, प्रभा बहन दिल्ली वाली कहाँ है, पीछे है, अच्छा नहीं तो प्रभा बहन और सुदेश बहन मंच पर आएंगे अमृत, जैसे संदेश पूरा होगा ना, किरण बहन, सुदेश बहन, प्रभा बहन और मंच पर आएंगे अमृत पिलाने के लिए। तो अभी हम सब चलते हैं बाबा के, अच्छा शांतिवन में भी भट्टी और अन्य प्रोग्राम चल रहे, शांतिवन से जो भाई बहने आए हाथ खड़ा करें, अच्छा नीचे भी भट्टी है। अभी आप सबको बता दें शांतिवन से आए हुए और सभी भाई बहने ध्यान देंगे कि आपको पहले भी बताया गया है, फिर से बता रहे हैं, सबका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही रहता है, वहां पर ही जाना है, और नीचे तो बैठने और खड़ने की जगह नहीं है। साथ साथ आप देख रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी क्या है कि कल इंद्रदेव भी इतना प्रसन्न हो गए, रात भर ठम ठम करते रहे, तो आज भी वो खुश हैं, आज भी बारिश खूब आएगी। इसलिए सबको ध्यान देना है, जब मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियों से उतरते हैं तो उस समय भी धीरे धीरे माता ध्यान रखना है, और वहाँ रेलिंग है उसको पकड़ करके चले, और दूसरा जब पांडव वन के आंगन में चलते हैं ना, पेड़ के नीचे वहाँ पेड़ की पत्तियों से थोड़ा थोड़ा रस नीचे गिरता है, और वो नीचे जो फिसलने की जगह बन जाती है, इसलिए दौड़ो नहीं, आराम से चलो, बाबा की याद में चलो और फरिश्ता बन के चलो, ठीक है ना। दौड़ना नहीं है, फिर कभी कुछ ठोकर लग जाती है, कभी ऐसा भी होता है, और मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियों का वैसे रेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी बातें करते हुए उतरते ना तो पांव स्लिप हो जाता है, इसलिए सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम चलते हैं बाबा के पास, कहाँ जाएंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, और फिर उसके बाद नाश्ते के लिए जाएंगे। ओम शांति।
तेरी याद में जी
जीते हैं बाबा तेरी याद में, जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूं कि रंग बिरंगे लाइट की किरणों से ऐसे घूमते हुए और इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा दूर से देख करके मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे लाइट की किरणें बाबा के पास पहुंचते ही सुंदर मालाओं के रूप में बनती जा रही थी और बाबा एक एक माला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, बाबा ने कहा, बच्ची देखा कि ये क्या है? मैंने कहा, बाबा ये तो लाइट की किरणों की सुंदर सा रिमझिम चल रही है। बाबा ने कहा, नहीं, ये बच्चों के प्यार, बच्चों के रो रोहान और बच्चों के मन की भावनाएं बाबा के पास पहुंची हैं और अमृत वेले से ही बच्चे बाबा से बहुत प्यार से रो रोहान कर रहे हैं और बच्चों का स्नेह देख करके बाबा को भी खुशी है और बच्चे कई प्रकार के वायदे और कई प्रकार के प्लान्स आज बाबा को बता रहे हैं। तो इतने में बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो जैसे बाबा ने कहा तो क्या देखती हूँ, ढेर सारे बच्चे बाबा के पास हैं और बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर माला का कंगन बना हुआ था और बाबा ने ऐसे किया, सबके बाजू में जाकर के वो कंगन पड़ जाता था और कंगन से भी इतनी सुंदर लाइट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को ये कंगन क्यों दे रहे हैं? बच्चे बाप के साथ अनेक प्रकार के वायदे, प्रॉमिसेस और कई कई प्रकार के प्लान के बाबा को सुनाते रहते हैं, तो बाबा भी बच्चों की उमंग, उत्साह, प्रसारित को देखकर खुश होते हैं। इसलिए बाबा बच्चों के खुशी को ठप्पा लगाने के लिए बाबा उनको ऐसा कंगन पहना रहे हैं कि बच्चे अपने वायदे को कभी न भूलें और उस पर अटल रहें। तो जैसे वो कंगन सबके हाथ में जाता था उस पर लिखा हुआ था, बाबा मेरा साथी और बाबा का हाथ हमारे हाथ में है। बाबा ने कहा, बच्चों के साथ तो बाबा सदा है और बच्चे कभी कभी बाबा को कहते, बाबा आप कहाँ हैं, बाबा क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो साथ को भूल जाते हैं, कभी कभी अकेलापन अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को हाथ पकड़ करके हर समय आगे बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो लेकिन बाबा उनका हाथ थाम लेते हैं, हर प्रकार की समस्या को वो पार कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बच्चे बाबा के पास आए हैं तो बाबा देखो बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, तो सब खुश हो गए, बाबा हमको अभी सैर कराने ले जाएंगे। तो बाबा आ गए और बच्चे झुंड बना करके बाबा के साथ चलते हैं। इतने खुश कि बाबा हमें साथ ले जा रहे हैं। तो बाबा जब ले जा रहे थे तो पहले तो एक पहाड़ी पर आए और पहाड़ी पर चलने के लिए बच्चों को कहा, बच्चे आओ। तो कुछ तो बच्चे चढ़ते हैं, आधे में रुक जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग की जो मंजिल है वो इतनी ऊंच है, तो अपनी ऊंची स्थिति पर रहो। तो जैसे ऊंची स्थिति पर रुकते हैं तो सब उड़ करके पहाड़ी पर चलते हैं, और पहाड़ी से बाबा सारे विश्व का एक नजारा दिखा रहे थे। एक तरफ प्रकृति उथल पुथल और दूसरी तरफ सागर जो है वो इतना जैसे भूकंप की तरह से, भूकंप में सागर भी इतना ऊंची ओर आ रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर कुछ ऐसे अंधकार दिखाई दे रहा है, कहीं आंधी और तूफान। तो बाबा ने कहा ये परिस्थितियां पहले भी बाबा ने बताई हैं और अभी भी बता रहे हैं, अचानक कभी कहां भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे इन सब परिस्थितियों को पार करने के लिए तैयार हैं? तो बाबा ने कहा, पूछा तो सब बच्चे कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बाबा देखते हैं। तो बाबा ने क्या किया, सबको एक ऐसा फूल दिया, उस फूल के अंदर कई प्रकार की पंखड़ियां थी और पंखड़ियों में एक एक मोती या डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे बाबा ने बच्चों को दिया, किसी का एक पंखड़ी का एक डायमंड चमकता था, किसी की एक दो पंखड़ियों के दो डायमंड, किसी के तीन, किसी के चार, इससे ज्यादा नहीं। तो बाबा ने कहा इसमें तो इतने डायमंड हैं, क्यों नहीं चमक रहे? तो बच्चों को कहा क्यों नहीं चमक रहे हैं? बच्चों ने कहा बाबा पता नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को पहले से ही सर्व शक्तियां एक गिफ्ट के रूप में दी हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन सर्व शक्तियों में से कभी एक शक्ति का प्रयोग करते हैं, एक शक्ति को छोड़ देते हैं, कभी दो का प्रयोग करते हैं और बाकियों को भूल जाते हैं। तो जब कोई समस्या आती है तो फिर बाबा को पुकारते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, इन सर्व शक्तियों का एक ही साथ प्रयोग करना है। कई क्या करते, केवल साकाश देने की सेवा करते हैं, कई सोचते हैं अच्छा प्रकृति को साकाश दे, लेकिन बाबा ने कहा प्रकृति को साकाश देते हैं तो दूसरे प्रकार की माया के रूप आते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं सर्व शक्तियों को अपना साथी बनाओ और उनका बीच बीच में हर शक्ति का प्रयोग करते रहो, और ये शक्तियां किसी भी समय अचानक कोई भी परिस्थिति में जाने अनजाने कोई भी प्रकार की परीक्षा सामने आ सकती है। बाबा ने पहले भी बताया है कि अचानक कुछ भी होता है तो बच्चों के साथ बाबा तो है, लेकिन बाबा ने बच्चों को ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं शक्तियों का, तो इनका समय प्रति समय संगठित रूप में प्रयोग करें तो हल्के भी रहेंगे और बाबा संगम युग के अंदर भी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाया है, तो स्वराज्य अधिकारी के पास सर्व प्रकार की शक्तियों का ताज भी है और सर्व प्रकार की शक्तियों का कमीन भी है। तो बच्चों को इसका प्रयोग करना है और इससे हल्के भी रहेंगे और परिस्थितियों में कभी घबराएंगे नहीं, हर परिस्थिति को ऐसे पार करेंगे जैसे कि ये कोई परिस्थिति आई नहीं है, और सदा अपने को विजयी अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा मेरे सब बच्चे विजयी रत्न हैं, और बाबा को भी विजयी रत्नों को देख करके खुशी होती है। फिर बाबा सबको ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे दोनों बाहों में लेकर के प्यार कर रहे थे। फिर वो फूल जिसके ऊपर डायमंड चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो सब शक्तियां ऐसे सामने आकर के झुक झुक करके कह रही थी, हम आपका आज्ञा ऑर्डर को मानने वाले हैं, आप सदा ऑर्डर करें, हम सदा एवर रेडी है। तो बाबा ने कहा जब शक्तियां एवर रेडी है तो बच्चों को भी एवर रेडी का पाठ पक्का करके ऐसे स्वरूप में रह करके, भविष्य तो राज्य अधिकारी है लेकिन इस समय सर्व शक्तियों को साथ लेकर के अपने स्वराज्य अधिकारी बन करके चलते रहे, और विजयी रत्न है। विजय तो बच्चों का सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फिर बाबा सबको फिर से दृष्टि दे रहे थे, और दृष्टि देते हुए फिर बाबा ने वो फूल फिर से दिखाया। बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी अपने हाथ से सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। फिर उसके साथ जिनके भोग थे उनके निमित्त बाबा को याद दिया। बाबा ने उन सबको इमर्श करते हुए दृष्टि के द्वारा उनके जो शुभ संकल्प या जो भी संकल्प है, और दृष्टि के द्वारा हर एक को एक न एक वरदान दे रहे थे। कहा निश्चिंत रहो, बाप साथ है। सबको याद दिया। ओम शांति।